रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजा। कोई बातें नहीं हो सावधानी से सुने। बैसाख सुदी अष्टमी संवत 1995 दिनांक 7 मई 1938 कर्णवास, लेख का नाम है भगवान विष्णु का ध्यान। नारायण नाम की कई गुप्त बातें। हजार व्यक्ति स्वर्ग में जाता है, बाकी सब तिर्यक योनियों में भटकते रहते हैं, स्वभाव के कारण से नीचे गिरते हैं। भजन साधन आदि का प्रयत्न करें तो ऊपर जा सकते हैं, अधिकांश की दशा तो नीचे गिरने की दिखती है। प्रकृति भारी है, इससे जो संबंध करता है वो गिरता है। जैसे कागज है, पतला कागज हवा में उड़ सकता है, परंतु किसी पत्थर के साथ बांध दो तो वो कागज भारी हो जाएगा, क्योंकि पत्थर भारी है। इसी प्रकार से जीव प्रकृति के साथ संबंध करता है, प्रकृति का स्वभाव नीचे की तरफ जाने का है, नीचे गिरता है। किसी न किसी प्रकार से कोई भगवान दया करके ऊपर उठा ले में तो बात अलग है। हमारी दृष्टि में तो दुनिया का पतन स्वाभाविक हो रहा है। भगवान को जब बड़ी दया आती है, उस समय जीवों की दुर्दशा उनसे देखी नहीं जाती, भगवान फिर अवतार लेकर उनका उद्धार करते हैं। क्या भगवान का रूप है? शशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसी रुहे क्षणम सहार वक्ष स्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णुम सिरसा चतुर्भुजम शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। ध्यान के लिए एकांत में रहना अथवा जहां खूब भजन साधन हुआ हो वहां रहना बहुत अच्छी बात है। ये कर्णवास भी एक तीर्थ है, वैराग्य की भूमि है। आप जब भी ध्यान करने बैठो तो ये धारणा मत लगाओ कि मन तो चंचल है, कैसे ध्यान लगेगा। घबराओ मत, आज तो हमारा ध्यान लगेगा ही, ऐसा निश्चय करके ध्यान में बैठो। आपका जितना दृढ़ निश्चय होगा तो वो ध्यान लगता ही है। जब आप ध्यान के आसन में बैठो तो अपने शरीर की सत्ता को मिला दो, मिटा दो, सत्ताहीन कर दो, ढीला छोड़ दो। शरीर नाम की कोई चीज है ही नहीं, चुपचाप बैठ जाओ। 2-3 घंटे तक आप आराम से बैठ सकते हैं। भगवान को पुकारो, आह्वान करो, प्रशांतात्मा विगते भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थित है, मन संयम्य मत चित्तो युक्त आसीत मत पर है। छठे अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने कहा प्रशांत आत्मा, आत्मा का अर्थ या मन है, मन में एकदम शांति रख करके ध्यान करो। संसार में वृत्तियां जाती हैं, उनको वहां से प्रयत्न पूर्वक हटाओ। फिर मन की कामना, भोगों की आसक्ति, इनका त्याग करो और अपने मन को समझाओ कि अरे मन बहुत भटका है रे भोगों में, इन नाशवान और दुख देने वाले भोगों से तुझे क्या मिलेगा। परमात्मा को छोड़कर नाशवान भोगों में वृत्ति करना कितनी मूर्खता है, ऐसा समझाकर भोगों से घृणा करें। प्रत्येक भोगों में दोष है, स्त्री आदि में आसक्ति हो तो अपने शरीर के अंदर हाड मांस मलमूत्र गंदी चीजें, इनका ध्यान करो। इस शरीर सुख के लिए मैं कितना पतन की तरफ जा रहा हूं, ऐसे सभी पदार्थों में पोल है, सब त्याज्य है, सब में अपवित्रता है। पवित्राणाम पवित्रोयम, पवित्रों में पवित्र केवल परमात्मा का स्वरूप है, बाकी सब जगह गंदगी गंदगी है। चाहे अपने शरीर में हो, चाहे स्त्री के शरीर में हो। पहले इंद्रियों को भोगों से हटाओ, कामना के कारण से इंद्रियां फिर प्रवृत्त होती हैं, तो फिर कामना को जीतो। और कामना होती स्फुरणा से, संकल्प से, तो संकल्पों को हटाओ। लोगों को पता नहीं है किस प्रकार से संसार से हटकर परमात्मा में मन लगाया जाता है। पहले इंद्रियों को हटाओ, फिर कामना को हटाओ, फिर अपने संकल्पों को हटाओ, तभी प्रशांत आत्मा बनोगे, अब मन में शांति रहेगी। कामना के रहते शांति नहीं रहेगी। प्रशांत आत्मा या आत्मा मन का वाचक, जिसका अंतःकरण विषयों से शांत हो गया है, संसार से अंतःकरण हट गया है, जिसके अंतःकरण में शांति शांति है, न कामना है, न संकल्प है और न ही इंद्रियों के पीछे मन का जाना है, कुछ नहीं है, न संशय है, न भय, वही वास्तव में प्रशांत आत्मा है। जब भगवान प्रकट होते हैं तो वो सीधे नहीं आते हैं, जैसे कोई राजा महाराजा आता है अकस्मात नहीं आता है, पहले उसके दूत आते हैं, समाचार करते हैं कि आज अमुक देश के यहां राजा आने वाले हैं, फिर उनके सेवक लोग आते हैं, फिर राजा आते हैं। ऐसे ही राजाओं के राजा, सबसे बड़े राजा, हमारे अपने राजा, जब भगवान प्रकट होते हैं तो उसके पहले भगवान की दासी शांति है, उसका साम्राज्य होता है। भगवान के दर्शनों से पहले एक अपूर्व शांति का अनुभव होता है। उस समय ये समझिए कि हमारा लक्षण ठीक है, यहां अभी शांति है, उससे भी अधिक शांति भगवान के आने पर फैलती है। ये भगवान क्या, भगवान के शुभागमन का संकेत करती है। भय रहित हो जाओ, सबसे बड़ा भय तो मौत का है, ध्यान में बैठने वाला व्यक्ति जब अपने शरीर की सत्ता को धूमिल कर देता है, फिर मृत्यु का भय उसके पास आएगा ही क्यों? भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, मेरा प्राण और शरीर से कोई संबंध है नहीं, लेकिन कहीं यदि हो जाए तो आप ऐसी प्रार्थना, ऐसी कृपा करो, मेरी प्रार्थना सुनो। ध्यान करते करते ही प्राण चले जाए। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। यदि आप बिल्कुल निर्भय होकर के ध्यान करेंगे तो शेर और भालू वाले जंगलों में भी चले जाओगे, शेर गर्जना करेगा, आपके पास आएगा, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, सूंघ के चला जाएगा। कईयों की बातें सुनिए, पुराने जमाने की ऋषि मुनि आश्रमों में जंगलों में एकांत में रहते थे। शेर आते और उन ऋषियों को ध्यान में साधन करते देखते तो वे चुपचाप चले जाते थे, क्योंकि वे निर्भय हैं। जिसके अंदर भय होता है, उस भय के कारण अगले के अंदर भी भय पैदा होता है। आपके अंदर निर्भयता है तो फिर शेर आपसे भयभीत नहीं होगा, वो भयभीत होता है तो प्रहार करता है। राजा दिलीप ने गैया की सेवा की, सिंह आ गया, दिलीप ने सिंह के सामने अपने शरीर को रख दिया और वे ध्यान में बैठ गए कि मुझे खा लो, गैया को बचाओ। इतने में ही गैया ने कहा, कोई सिंह नहीं है दिलीप, मैं तुम्हारी परीक्षा के लिए सिंह हो गई थी, अब कोई वरदान मांगो। तो राजा ने कहा कि मेरे कोई संतान नहीं है। तो गैया ने कहा, चलो हो जाएगी। तो आगे जाकर उनके रघु नाम का लड़का हुआ, जिससे रघुवंश चला। यानी हम ध्यान करके बहुत ऊंची अवस्था में जा सकते हैं। एक विशेष बात कहते हैं, आप ध्यानावस्था में भगवान से प्रार्थना करो, बस प्रभु इसी दशा में हमारे प्राण जाने चाहिए, आपका इसी अवस्था में प्राण जाएगा। ब्रह्मचारी व्रते स्थित है, ब्रह्म में विचरण करना अर्थात नित्य निरंतर परब्रह्म परमात्मा का चिंतन करना, उनके प्रेम की बातें सुनना, उनके प्रेमियों का जीवन सुनना, अंदर ही अंदर मनन करना और भगवान के प्रेम को, भक्तों के प्रेम को आपस में देखकर मन ही मन में मुदित होना। मुदित होना माने प्रसन्न होना। इस प्रकार की वृत्तियां बनावे। बहुत से लोग मन के अंदर कुड़ते हैं तो उनके शरीर की आकृति ऐसी होती जैसे वो मन में किसी से बात कर रहे हो। ऐसे देखा है, ठीक लिखा है कि आदमी मन से किसी से लड़ते हैं तो बोलते भी यही, अकेले ही अकेले यूं इशारा भी करते हैं। तो अपने मन की वृत्तियां भगवान में और भक्तों में लगाओ, उनसे ही बातें करो, उनकी बातों में प्रेम में मुग्ध हो जाओ। बाहर का ध्यान रहे ही नहीं, मन से समझ लो कि बाहर की बातें बाह्यात हैं, बेकार हैं। मन से भगवान के नाम की आवृत्ति करते रहो। बार बार आवृत्ति करना मनन है, बारंबार नाम का उच्चारण करो। नारायण नाम की आवृत्ति करें, सिवाय नारायण के कुछ है ही नहीं। नारायण के नाम रूप की आवृत्ति करते रहने से पापों का अत्यंत अभाव हो जाता है, शांति मिलती है। नारायण के विषय में आपको गुप्त बात बताते हैं। वैसे तो भगवान के सभी नाम ठीक हैं, मरते समय नारायण का नाम विशेषता से याद करना चाहिए। ये नाम बहुत सरल है, थकावट नहीं होती है, चाहे 4 घंटे बोलते रहो। इसलिए हम तो कहते हैं मृतक को नारायण का नाम ही सुनाना चाहिए। भगवान गुणों के भंडार हैं, प्रेम दया शांति तो अलौकिक है, क्षमा की मूर्ति है। अपने दासों के दोष क्षमा करना उनका धर्म है। ये जो भृगुलता का चिन्ह है ये भगवान धारण करते हैं, क्यों? दुनिया को बताने के लिए कि भृगु जी ने हमारे लात मारी तब हमने उनके लात को प्रसाद समझा है, धारण किया है, हम क्षमा करने वाले हैं आपको, विश्वास के लिए हम बोलते हैं। क्या भगवान ने क्षमा की? भृगु जी कोई उल्टा बोलते हैं, हे भृगु महाराज आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ ना? भृगु जी प्रसन्न होकर कहने लगे, प्रभु आप जैसे क्षमा की दया की मूर्ति कहां मिलेगी? उदारता तो आपकी हद है, प्रत्येक अवतार में उदारता की कोई सीमा ही नहीं रखी। अपने साथ बुरे बर्ताव करने वाले का अपने साथ बुरा बर्ताव करने वाले का भी उपकार ही करते हो। विभीषण को लंका का राज्य देकर भी संकोच करते हैं कि विभीषण मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, प्रेम की तो मूर्ति हो, आपसे जो प्रेम करता है आप उस प्रेम करने वाले से अधिक प्रेम करते हैं। भीलनी के साथ कैसा प्रेम किया, शबरी के साथ? ऐसे भगवान के प्रेमी बनो। क्या दुनिया के नाशवान भोगों में प्रेम करते हो? कितनी अमूल्य चीज है प्रेम करना, उसको कहां गंदी चीजों में लगा दिया। ऐसे भगवान में प्रेम करना चाहिए ना। एक तार भगवान में लगे रहो मत चित्त है, आजीवन भगवान का ध्यान ही करता रहे। लोग चाहे हमको मूर्ख बताएं, लोगों से तो मूर्ख होना अच्छा है। नारायण नाम लेते ही माया का कुटुंब पास में नहीं आएगा। जैसे घर में कोई जगता हो तो चोर अंदर नहीं घुसता, ऐसे नारायण का नाम लेने से माया का प्रभाव नहीं पड़ता, माया का कुटुंब नहीं आता। भगवान में ध्यान लगाओ, ध्यान में स्थित हो जाओ, कैसी आनंद की बात, प्रसन्नता की बात, प्रकाश करने वाली बात। नए नए ज्ञान की नई नई बातें पैदा होती हैं, आनंद समाता नहीं है, रोम रोम से फूटता है। इस ज्ञान के सिवा कुछ नहीं है। इंद्रियों में जो प्रकाश दिखता है वो ज्ञान का प्रकाश है। लट्टू के अंदर बिजली का प्रकाश है, बिजली की शक्ति है। लट्टू की बनावट ऐसी है कि उससे बिजली का प्रकाश हो गया, लेकिन मूल बिजली है। क्या शांत वातावरण है, मंद मंद शीतल वायु, एकांत स्थान। भगवान से कहो, हे प्रभु प्रभु आनंदमय है आप, आनंदमय आनंदमय। यदि आप आनंदमय नहीं होते तो हमको आनंद कहां मिलता? ये आपके आनंद की हिलोरे हमारी तरफ आ रही है। जब आनंद का अनुभव होगा तो विक्षेप और आलस्य ये रहेंगे ही नहीं, पूर्ण आनंद, अचल आनंद, बोध स्वरूप आनंद, ज्ञान स्वरूप आनंद, आनंद स्वरूप आनंद, आनंद में से आनंद ही उत्पन्न होकर आनंद में ही लीन हो रहा है। शांति की बाढ़ आ रही है, उत्तरोत्तर प्रसन्नता बढ़ रही है। अब भगवान साक्षात प्रकट हो सकते हैं तो ध्यान होना कोई बड़ी बात थोड़ी ही है, ध्यान होना मामूली बात है। संत महात्माओं के तो हृदय में हरदम ध्यान रहता है, विशेष शक्तिशाली महात्मा हो वह साधक को भी करा सकता है। संसार का प्रभु का चिंतन करना हमारे हाथ की बात है, चाहे तो संसार का कर लो चाहे प्रभु का कर लो, लेकिन जिसने जिसको प्रभु के ध्यान का चस्का लग गया या जिसने संसार की लात खा ली, वो प्रभु को छोड़कर संसार का चिंतन क्यों करेगा। विभीषण के जैसे लात पड़ी, विभीषण के एक लात लगी, सावधान हो गया। हम लोगों की इतनी लात लगती है, संसार की तरफ से इतने मुक्के इतनी थप्पड़ लगती है, फिर भी हम सावधान नहीं होते। देखो भगवान का ध्यान करने पर कैसी प्रसन्नता छाती है, ये लक्षण है, प्रभु के प्रकट होने के लक्षण है। जैसे बरसात आने के लक्षण होते हैं, बदल हो, काले काले बदल हो तो देखते हैं अब बरसात आ सकती है, वो तो आवे न आवे। परंतु जहां अपार प्रसन्नता हो, अपार शांति हो, प्रभु का ध्यान हो, वहां प्रकट, वहां साक्षात भगवान प्रकट होते ही है। आह्वान भी प्रभु का ही हो रहा है, अब एक क्षण में प्रकट होते ही है, अब होते ही है, ऐसा मन में भाव बना रहे, कैसी शांति, प्रसन्नता, प्रकाश, ज्ञान की बाहुल्यता, मन बुद्धि में बाहर भीतर आनंद, समता, ज्ञान, सबकी बाढ़ आ रही है। आनंदमय, आनंदमय, आनंदमय। आज तो प्रभु अपने आप ही आकाश में प्रकट हो रहे हैं, हमारी इतनी विशेष इच्छा नहीं फिर भी प्रकट हो रहे हैं। आज तो विशेष प्रकाश है, मानो सदाई भगवान श्वेत द्वीप में रहते हैं। श्वेत द्वीप में क्यों रहते हैं, वे तेज पुंज है, तेज पुंज रूप से वे वहां श्वेत द्वीप में निवास करते हैं। जैसे चंद्रमा की चमक होती है ऐसे भगवान चमक रहे हैं, आनंदमय, आनंदमय। नीली नीली चमक थोड़ी मंद है, अलौकिक चमक है, महान प्रकाश है, चम चम चंद्रमा के समान शरीर चमक रहा है। उनकी चमक से सारा ब्रह्मांड चमक रहा है। ख्याल करो तो प्रकाश का पुंज ही प्रतीत हो रहा है। भगवान का विग्रह रूप प्रकाश ही घन होकर मूर्ति के आकार में प्रकट हुआ है। हे प्रभु क्या आपकी लीला है, हे प्रभु। शशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहारवक्ष स्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। नेत्र बंद कर लो, साक्षात इस रूप में दिखाई दे रहे हैं, मानो वे स्वतई स्वरूपवान यहां है। चरणों में ध्वजा पताका अंकुश आदि दिख रहे हैं चरणों के नीचे। अब भगवान और भी नीचे आ गए, अब हमको ध्वजा पताका तो नहीं दिख रही है क्योंकि जमीन से 2 फुट ऊपर है। प्रभु का विग्रह 5-5.5 फुट होगा, महान सुंदर प्रकाशमान है, स्थायी प्रकाश है, अद्भुत प्रकाश है। भगवान के श्री चरणों का ऊपरी भाग चमक रहा है, चरणों का ये ऊपरी भाग है चमक रहा है। सुंदर अंगुलियां और उनके गोल गोल नाखून बड़े प्यारे लगते हैं। हाथों में शंख चक्र है, शंख के अंदर चारों वेद भरे हैं। वो शंख जिसके छुआ देते हैं वही शास्त्रों का ज्ञान कर लेता है। चक्र रखा है भक्तों की रक्षा करने के लिए, भक्तों के ध्यान में साधन में कोई बाधा न आए इसके लिए भगवान चक्र रखते हैं। भृगुलता ये शिक्षा देती है, कोई भी हमारे जीवन में कोई अपराध करे उसको जितना आप क्षमा करोगे उतनी आपको अपार शांति मिलेगी, आप भगवान के निकट पहुंचोगे। किसी की गलती की तरफ देखो मत, ध्यान चला जाए तो क्षमा करो, ये भगवान के पास के आने का मार्ग है। भगवान परम प्रेमी है, इसलिए भगवान आपकी तरफ एक टक देखते हैं। जरा भगवान के नेत्रों जरा अपने नेत्रों की वृत्ति भगवान के मुखारविंद पर देखो तो सही, उनकी आंखों से इशारा हो रहा है कि आओ मेरी तरफ आओ, भटकना नहीं, तुम्हारा मैं हूं क्योंकि तुम मेरे हो। इस बात को ध्यान में रखकर भगवान से अलग नहीं होना। सुंदर रूप भगवान इसलिए दिखाते हैं कि तुम्हारा मन कभी संसार की सुंदरता में भटकने जाए। प्रभु हमको इस प्रकार का देखना चाहते हैं कि हमारा मन कहीं संसार में तो नहीं जा रहा है। भगवान देखते मेरे में ही प्रेम रहे, तुम मेरी तरफ देखो, केवल मेरी तरफ देखो, भोगों को ठुकरा दो। वो हमको विरक्त देखना चाहते हैं, उनकी अभिलाषा है, उनकी कामना है। हमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान की कामना पूरी करनी चाहिए। हमको संसार से वैराग्य और उपराम होकर प्रभु को प्रसन्न करना चाहिए। हमको यम नियम धारण करके, हमको यम नियम धारण करके देखेंगे भगवान, तब वे प्रसन्न होंगे कि अब इसने यम और नियम का पालन किया है। यम क्या होता है? यम होता है निषिद्ध कर्मों का त्याग, वो होता है यम। और विहित कर्मों का त्याग वो होता है, विहित कर्मों का अनुष्ठान वो होता है नियम। तो भगवान नियम से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने यम से प्रसन्न होते हैं, अर्थात निषिद्ध काम छोड़ते हैं तो भगवान खुश होते हैं। हमको यम नियम धारण करके देखेंगे तभी वे प्रसन्न होंगे। ऐसे जब हमको देखेंगे तब वे आकर हमसे मिलेंगे। सहन शक्ति बढ़ाओ, कोई कुछ कहे उसको सहो, प्रेम पूर्वक सहो, द्वेष पूर्वक नहीं, प्रेम पूर्वक सहो। सहने से ध्यान में शक्ति मिलती है, जप में शक्ति मिलती है, परमात्मा की तरफ चलने के साधन में शक्ति मिलती है। स्वाध्याय करो, अपने आप का अध्ययन करो, अच्छे अच्छे संतों की पुस्तकें पढ़ो, भक्तों का चरित्र पढ़ो, सत्संग की बातें सुनो। भगवान चाहते हैं कि हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारे स्वभाव पर सद्गुणों के आभूषण लदे रहें। सोने चांदी हीरे मोती तो पत्थर के आभूषण हैं, इनकी तरफ नहीं, देवी संपदा के गुण हैं। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग अव्यवस्थिति, ये आभूषण इनसे हम लदे रहे। वे हमको धर्म में, प्रेम में, नीति में निपुण देखना चाहते हैं। ऐसे जब हम बन जाएंगे तब हमको नहीं छोड़ सकते। भगवान की आदत है, त्रिलोकी को छोड़ सकते हैं, लक्ष्मी को छोड़ सकते हैं, पर ऐसा भगत होता है उसको भगवान छोड़ नहीं सकते। हमको प्रभु छोड़े नहीं, यह भी प्रभु को बांधने की बात है, परंतु वे बंधने में राजी होते हैं तो उनके प्रेमी बन जाओ। जैसे मनुष्य की छाया है, जैसे कठपुतली है, किसी के अधीन रहती है, ऐसे अपने को भगवान के अधीन ही बना लो। हमारा शरीर कोई काटे, काटे तो हमारा अंग अंग हंसना चाहिए, वह प्रभु की मर्जी है, क्यों नहीं कटे? रतन कुमार हंसता था। हमको ऐसा बन जाना चाहिए कि प्रभु की आंख से आंख मिलाकर बात करें, मन से मन मिलाकर के बात करें। हम प्रभु से दूर नहीं, प्रभु हमसे दूर नहीं, ये भाव हरदम रखो, बड़ा लाभ होगा। कभी आप गलत काम करेंगे, औरों से तो आंख बचाते हो, कोई देखता तो नहीं है, परंतु हृदय में भगवान का विश्वास है कि भगवान देखते हैं तो आप गलत काम कर नहीं सकते, धन्य है। ऐसा भाव बन जाए कि हम दूर नहीं भगवान से, भगवान दूर नहीं हमसे, बस धन्य हो गए। जिसने प्रभु को अपने हृदय में स्थान दे दिया, बस वो निहाल हो गया। कैसी दया है, चाहे जहां, चाहे जब, चाहे जो कोई भगवान का ध्यान कर सकता है, चाहे जहां कर सकता है, चाहे जो कर सकता है, चाहे जब कर सकता है। ऐसा बनना चाहिए कि प्रभु हमको छोड़े नहीं, उनके अंदर हमारी गरज पैदा हो जाए। भगवान कहते हैं कि मनुष्यों के भोगों में, देवताओं के अमृत में और ब्रह्मलोक के ऐश्वर्य में जो सुख है, वो तो मेरे यहां एक छोटे से तिलमात्र में भी जो सुख है उसकी तुलना नहीं हो। मुग्ध थे, उर्वशी को उन्होंने मां का स्थान दिया, उर्वशी एकांत में अर्जुन के पास आई और कहने लगी कि मैं तुम्हारी सुंदरता पर मुग्ध हूं, तुम मुझे स्वीकार करो। अर्जुन ने कहा, माताजी क्या बोलती हूं कि ये शब्द कहां से लाएगी, हमारे पृथ्वी का शब्द है कि मैं स्वर्ग की अप्सरा हूं, मेरे यहां ये शब्द नहीं चलता है, मेरे यहां तो चलता है कि तुम मुझे एकटक क्यों देख रही थी, क्यों देख रहे थे कि मैं देख रहा था कि मेरी मां के अंदर नाचने का कितना गुण है, कितनी कला है। मैं सोच रहा था कि मेरी मां कितनी सुंदर है, मैं धन्य हो गया क्योंकि इंद्र मेरे पिता है और इंद्र आपको सबसे ज्यादा चाहते हैं, तो मेरे लिए मां हो गए। कारण क्या था कि अर्जुन भगवान के रूप के ऊपर मुग्ध था, इसलिए वो अप्सरा पर भी मुग्ध नहीं हुआ। भले ही उर्वशी ने श्राप दे दिया, अर्जुन ने कहा मैं निरपराध हूं, मैंने अपराध नहीं किया है, फिर भी आप मां हो, मुझे श्राप देते हो, मैं श्राप स्वीकार करता हूं। आखिर अंत में उर्वशी विचार करके कहने लगी, देखो अर्जुन, ये श्राप मैंने ईश्वर की प्रेरणा से दिया है, मैं तुम्हारे अलौकिक गुण को देखकर प्रणाम करती हूं, तुम्हारे जैसे पुरुष सत्पुरुष संसार में बहुत कम है, प्रणाम करके चली गई। अब यदि अर्जुन प्रभु पर मोहित नहीं होता तो स्वर्ग की अप्सरा और अप्सराओं में भी सबसे श्रेष्ठ उर्वशी अप्सरा उसके ऊपर मोहित नहीं होता, उसके हाथ की बात नहीं थी। पर वो प्रभु पर मोहित था, वह किसी और पर मोहित कैसे हो सकता है। परम ब्रह्म है, परम धाम है, ये स्तुति अर्जुन गाता है, वे कहां मोहित होगा। ऐसे दिव्य रूप का दर्शन करके वह त्रिलोकी के रूप को लात मार देता है, सब रस फीके मालूम देते हैं, सारी भोगों पर, संसारी भोगों पर मोहित होने वाला, संसारी भोगों पर मोहित होने वाले पर ऐसे पुरुष घृणा करते हैं कि तुमको भगवान अच्छे नहीं लगते और संसार के भोग अच्छे लगते हैं, घृणा करते हैं उस आदमी से, उसको देखकर हंसते हैं कितना मूर्ख है। उसके तो आनंद का स्थान प्रभु ही प्रभु है, तुष्यंति च रमन्ति च, ऐसा तत्व जानने वाला कभी संसार में रमण नहीं करता। रमण तो क्या, वो हाथ ही नहीं डालता, हाथ डालना क्या, वो नजर भी नहीं डालता, नजर क्या डाले, वो विमुख हुए रहता है। अतएव ऐसी स्थिति हम लोगों को बनानी चाहिए। यो माम पश्यति सर्वत्र, सर्वंच मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। ऐसा बनेगा वो सारे ब्रह्मांड को भगवान के अंश मात्र में देखता है। ऐसे पुरुष से भगवान कहते हैं मैं तुमसे एक क्षण भी अलग नहीं रह सकता, सर्वथा वर्तमानोपि सहयोगी मई वर्तते। सब प्रकार यथोचित मर्यादाओं का पालन करता हुआ भी वह योगी मेरे में रहता है, मेरे में रमण करता है, सर्वत्र मुझे देखता है। ऐसे भक्त की भगवान भक्ति करते हैं। वे कहते हैं मेरे तत्व को जानने वाला ऐसा प्रेमी आदमी ही है और दूसरा कोई नहीं है। नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्।